आज जो सब्जेक्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है एनवायरमेंटल साइंस, और हम बात करेंगे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। और आपको बता दें कि इस पे संपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ बनी हुई है हमारी एक्सपर्ट मिस नीलम गुप्ता जी। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है।
थैंक यू
जी।
आज हम बात करने जा रहे हैं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर। जब संसाधन की बात करते हैं तो संसाधन का बेसिक अर्थ क्या होता है कि ऐसी कोई भी वस्तु जो मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं और जो अपेक्षाएं, यानी नीड्स एंड वांट्स की पूर्ति के लिए जितने भी हमारे बायोटिक और एबायोटिक पदार्थ हैं, चीजें हैं जो कि पर्यावरण से प्राप्त होती हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि संसाधन वे होते हैं जो उपयोगी हों और या फिर मनुष्य को अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें उपयोगी बनाया जा सके, वो चीज़ें। वो तो संसाधन ये भी हो सकता है कि जो उपयोग के लिए हमें डायरेक्टली प्रकृति से मिलते हैं, तो अगर डायरेक्टली हमें मिल रहे हैं तो उन्हें हम प्राकृतिक संसाधनों की श्रेणी में रखते हैं। जैसे कि प्राकृतिक संसाधन के एग्जांपल्स की हम बात करें तो एयर हो गया, वाटर है आपका, सॉयल है, लैंड है, फॉरेस्ट है, बायोडायवर्सिटी है, आपके मिनरल्स हैं, और जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, ये सब हमारे प्राकृतिक संसाधनों की कैटेगरी में आते हैं। ये सब प्राकृतिक संसाधन पहले से ही अवेलेबल थे पृथ्वी पर, और जब हमारी पॉपुलेशन कम थी तो ये पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थे, सभी के लिए पर्याप्त थे। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, जनसंख्या में वृद्धि हुई, तो हमने इन प्राकृतिक संसाधनों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू किया, और आज अगर देखें तो ग्रोइंग पॉपुलेशन के साथ साथ हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी बढ़ी हैं, जिसके चलते हम इन संसाधनों का अत्यधिक दोहन करते हैं, और जब दोहन किए गए तो इससे जो परिणाम आया वो ये हुआ कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज थे उन पर एक बहुत भारी बोझ पड़ा, और अत्यधिक दोहन के का चलते जो पर्यावरण पर है उस पर भी हमें एडवर्स इफेक्ट देखने को मिले। तो इसका जो मुख्य इम्पैक्ट था हमारा बायोडायवर्सिटी लॉस पर, यानी आज हम देखें तो बहुत सारी जो प्रजातियां हैं, पादप हो या फिर आपके जंतु प्रजातियां हैं, वो या तो ख़त्म हो गई हैं, विलुप्त हो गई हैं, एक्सटिंक्ट हो गई हैं, और या फिर वो बिल्कुल ही विलुप्त होने के कगार पर हैं। तो इसका सीधा सीधा अर्थ क्या निकाला कि ये जो बायोडायवर्सिटी है या जो भी ये प्राकृतिक संसाधन हैं, वो हमारी भावी पीढ़ियों को वो नहीं मिलेंगे, उन्हें देखने को नहीं मिलेगा। ये जो एक ट्रेजर है, ट्रेजरी है, जो खजाना है, उससे वो वंचित हो जाएंगे। तो आज जो समय की मांग है वो ये है कि हमें हमारे प्राकृतिक संसाधनों के विभिन्नीकरण को रोकना पड़ेगा, साथ ही साथ जो उनका उपयोग है उसको एक न्याय संगत रूप से करना पड़ेगा, यानी हमें कंटिन्यूस रूप से उसका उपयोग करने के लिए को एक दूसरे को आमंत्रण देना पड़ेगा कि हम इनका संसाधनों का डिजिशियस उपयोग करें, और यही आज समय की दरकार है या ज़रूरत है कि उनका हम व्यर्थ उपयोग ना करें, अपक्षयित और अपक्रमित नहीं होने दें, और ये जो संसाधन हैं वो वर्तमान और भावी पीढ़ी दोनों के लिए ही उपलब्ध रह पाएँ। तो आज जब हम चर्चा इस पर जो कर रहे हैं उसमें बात कर रहे हैं कि जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका वर्गीकरण क्या है, और साथ ही हम बात करेंगे एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में, जो फॉसिल फ्यूल्स के बारे में, और बात करेंगे हम मिनरल्स के बारे में, और कि मिनरल्स को कैसे डिप्लीट होने से रोक सकते हैं, अपशय उनका कम हो, और कौन से हमारे जो स्रोत हैं प्राकृतिक संसाधनों में जिन्हें कि रिन्यूएबल बनाया जा सकता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे प्राकृतिक संसाधन और उनका वर्गीकरण के लिए। संसाधन पर हमने बात कर ली कि वो हैं वो चीज़ें जो कि मनुष्य की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु जैविक और अजैविक पर्यावरण से प्राप्त होती हैं, और ये दो तरह से होती है। जो प्राकृतिक संसाधन हैं वो दो तरह के हैं, एक तो रिन्यूएबल हो सकते हैं और दूसरे होते हैं नॉन रिन्यूएबल। ये भी दो तरह के होते हैं, रिन्यूएबल जो है वो डायरेक्ट अनकंडीशनली रिन्यूएबल हो सकते हैं और कंडीशनली रिन्यूएबल हो सकते हैं, यानी निरपेक्ष नवीकरणीय हो सकते हैं और सापेक्ष नवीकरणीय हो सकते हैं। जो निरपेक्ष है उसका एग्जांपल है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और आपका टाइडल एनर्जी, ये इसके एग्जांपल हैं। लेकिन जो कंडीशनली रिन्यूएबल है वो कई तीन तरह से विभाजित किए जाते हैं फर्दर। एक तो होते हैं हमारे अजैविक चक्रीय संसाधन यानी अबायोटिक साइक्लिक रिसोर्सेस, दूसरे होते हैं सिंपल बायोटिक रिसोर्सेस, और तीसरे टाइप को जो है वो है हमारा जटिल जैविक संसाधन यानी कॉम्प्लेक्स बायोटिक रिसोर्सेस। और अब इनका एग्जांपल जो एबायोटिक साइकिल रिसोर्सेज है उसका एग्जांपल है बायोजियोकेमिकल साइकिल, जिससे वाटर साइकिल हो गई, नाइट्रोजन साइकिल हो गई, सल्फर साइकिल हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल हो गई, इस तरह की साइकिल्स जो भी हैं, जो चक्र हैं, भूजैव रसायन चक्र जिन्हें हम कहते हैं, वो शामिल होते हैं एबायोटिक साइक्लिक में। और दूसरे जो हैं सिंपल बायोटिक संसाधनों में हमारे रिप्रोडक्शन और ग्रोथ को शामिल किया जाए, जो कि उनके एग्जाम्पल्स होते हैं, क्योंकि आपको पता है पौधे और जीव दोनों ही रिप्रोडक्शन करते हैं, उनमें दोनों में ही वृद्धि होती है, तो इसे हम सिंपल बायोटिक रिसोर्सेज के नाम से जानते हैं। उसी तरह से जब हम कॉम्प्लेक्स बायोटिक संसाधनों की बात करते हैं तो इसमें हम रिलेशन इंटर रिलेशन देखते हैं, इंट्रैक्शन देखते हैं बायोटिक और एबायोटिक दोनों ही कंपोनेंट्स का। इसका एग्जाम्पल हमारे अगर हम बात करते हैं तो इकोलॉजिकल सिस्टम जो होगा, इको सिस्टम की हम बात करते हैं, इसमें लैंड एंड वाटर की बात करते हैं, और जब हम रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करते हैं तो उसमें हमारे दो तरह के संसाधन हैं, क्योंकि नॉन रिन्यूएबल मतलब वो हमारी लाइफ में दोबारा वो उत्पन्न नहीं किया जा सकता, रिन्यूएबल है वो बनते जाते हैं, एक गया दूसरा आ जाएगा, उस तरह से वो साइकिल चलता रहता है। तो इसमें जो नॉन रिन्यूएबल है उसमें हमारे फॉसिल फ्यूल्स आते हैं और मिनरल्स आते हैं। मिनरल भी दो तरह के होते हैं, एक तो मेटेलिक मिनरल होते हैं यानी धात्विक होते हैं, धातुएं जो होती हैं, दूसरे होते हैं अधात्विक या नॉन मेटेलिक। उस तरह से फॉसिल फ्यूल्स तो आपको पता ही है, उसमें हमारा ऑयल हो गया, कोल पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, आपका गैस है, लिग्नाइट है, पीट है, ये सब हमारे फॉसिल फ्यूल्स के अंदर आते हैं। अब हम बात करते हैं जो प्राइमरी हमारा एनर्जी रिसोर्स है और उसका क्या कैसे क्या उपयोग है। तो जो प्राइमरी रिसोर्सेज को अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हम दिमाग में आता है कि सोलर फॉसिल फ्यूल्स हमारे प्राइम, और इसमें ये जो फॉसिल फ्यूल्स है वो क्या है, ये सौर ऊर्जा का ही एक दूसरा रूप है, और इसमें शामिल होते हैं हमारे कोयला हो गया, लिग्नाइट हो गया, पीट है, कच्चा तेल है, और नेचुरल गैस शामिल होती है, और ये सभी को हम प्राइमरी स्रोत मानते हैं ऊर्जा के लिए। और ये जो स्रोत हैं वो नॉन रिन्यूएबल हैं और समाप्तशील हैं, यानी कोयला आज की डेट में जितना है वो अगले 40 साल में 50 साल में शायद ख़त्म भी हो सकता है। उसी तरह से आपकी नेचुरल गैस है या पेट्रोलियम है, ये सब एक निश्चित मात्रा में ही हैं, और ये हमारे लाइफ टाइम में ये इनको हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं, नवीकरण इनका नहीं हो सकता है। और इनको क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इनको बनने में लाखों साल लगते हैं, और अगर अपनी आयु देखें तो 60 70 80 साल से ज़्यादा हम लोग का नहीं है। तो और उसी तरह से ये जो भी हैं, चाहे कोयला है, पेट्रोलियम है या गैसेस है, नेचुरल गैस है, तो ये क्या है कि ये कभी ना कभी ये जैविक जो प्लांट्स और एनिमल्स थे उन्हीं के अवशेष हैं, तो ये ओरिजिन में ही जैविक थे अगर हम इन ओरिजिन देखते हैं तो। और जैसे हम बात करें तो कोयला है वो प्लांट जो पहले थे वो भूमि में जब दब गए, लाखों साल बाद में वो कोयले के रूप में परिणित हुए, और आज हम क्या करते हैं कि हम इनका दोहन यानी हम इनका उपयोग इतनी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं कि वो धीरे धीरे शायद हमेशा के लिए भी समाप्त हो सकते हैं। उसी तरह से आप देखिए कि हम कितने सारे एक्टिविटीज़ में ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी तेल का उपयोग कर रहे हैं, व्हीकल है जलाने के लिए, हाँ आप कितने तरह तरह के व्हीकल्स का इस्तेमाल करते हैं, और दुनिया भर के हर देश में तेल की मात्रा मतलब तेल की आपूर्ति बहुत ज़्यादा हो रही है, कंज्यूम हो रही है, और ये इसी कारण ये है कि ये धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। और अगर आज की दर से यानी पूरे दुनिया की अगर पॉपुलेशन लगाए तो 6 अरब से ज़्यादा है, अगर वो इसी दर से करते रहे, सारे जगह से खनन करके हम तेल निकाल रहे हैं, पेट्रोल निकाल रहे हैं, तो कुछ समय बाद शायद ये मात्रा हमारे लिए बहुत कम हो जाएगी, और हो सकता है कि कुछ सालों में ये बिल्कुल ही समाप्त हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या विकल्प हम सोच सकते हैं कि कौन से ऐसे ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज सोची जाएँ ताकि हम इस ऑयल को संरक्षित कर पाएँ, थोड़ा इसका कंजम्पशन कम कर पाएँ। तो हमें अधिक तेल की खोज करनी पड़ेगी, नहीं नए नए रिसोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे, नए नए ऑयल फील्ड ढूंढने पड़ेंगे, उनकी सर्च करनी पड़ेगी, और तेल को हम बेकार होने से बचाएं, उसको व्यर्थ ना होने दें, और साथ ही अगर हम तेल के जगह पर दूसरे विकल्प भी ढूंढें, तभी हम अपने इस तेल स्रोत को आगे फर्दर जो पीढ़ी हैं, जनरेशन है, उनके लिए रख पाएंगे। अब हम बात करते हैं, हमने बात की थी फॉसिल फ्यूल जो कि प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत आता है, और इसमें हमें मालूम है कि जो हमारा कोयला है, तेल है और प्राकृतिक गैस है, ये जीवाश्म ईंधन होते हैं और के ही परंपरागत स्रोत हैं, और कोयला जो है दुनिया में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया में पेड़ सभी जगह हैं, इसीलिए जो कोयला है वो सब हर जगह पाया जाने वाला, प्रचुरता से पाया जाने वाला एक ऊर्जा का स्रोत है, और जिसे खास तौर से इलेक्ट्रिसिटी के लिए और स्टील के उत्पादन के लिए इसको जलाया जाता है, और ये जीवाश्म ईंधन ठोस है, कोयले का अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो वो ठोस है, और ये बहुत सारे इसके प्रोसेस के थ्रू ये कोयला हमें प्राप्त होता है, और ये जो पौधे हैं जिनका कि ये जीवाश्म है, जो पौधे के अवशेष हैं जो कि 300-400 लाख वर्ष पूर्व पाए जाते थे, उन्हीं से हमें ये आज कोयला प्राप्त हुआ है। तो जब कोयला बनता है सबसे पहले वो पेड़ जो है गल सड़ गया, पीट बना, उसके बाद में वो लिग्नाइट होता है फॉर्म, उसके बाद में विटामिनस फॉर्म होता है, लास्ट में जो आता है वो होता है एंथ्रोसाइट फॉर्म कोयले की, जो कि सबसे जिसमें कि सल्फर की मात्रा सबसे कम होती है। ये एक फ्लो चार्ट के तौर पर आपके बुक में दिखाया गया है, तो आप उसे देख सकते हैं। और अगर हम ये बात करें कि सबसे ज़्यादा कोयला किस दुनिया के किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो USA में दुनिया का सबसे बड़ा कोयला का भंडार है, यानी वहाँ पर 1/4 यानी 25% कोयला मिलता है दुनिया का, उसके बाद में रूस का स्थान है और बाद में चीन का स्थान है, और चीन पर का अगर बात करें भंडार 16% में भी, तो वो हो सकता है कि अगले 300-400 साल तक भी उसके पास ये पर्याप्त मात्रा में भंडार रहेगा, लेकिन जो हमारे भारत में जो कोयला पाया जाता है वो जितना भी क्षेत्र में कोयला पाया जाता है, सबसे ज़्यादा कोयला झारखंड में पाया जाता है, जो कि 1/3 भाग झारखंड में कोयले का भंडार उसमें पाया जाता है, और उसमें जो क्षेत्र हैं वो हैं हमारे झरिया, बोकारो, गिरिडीह, डाल्टनगंज, रामगढ़ आते हैं, और कोयले का एक जो एडवर्स इम्पैक्ट होता है, इफ़ेक्ट जो पर्यावरण पर होता है, क्योंकि कोयले के जलने से, खनन में जलने से, दोनों से ही पर्यावरणीय प्रदूषण होता है, प्रभाव कैसे हैं, जल पर होता है, भूमि पर होता है, वायु पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है, और जितना टोटल ईयरली एनुअली अगर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन का अगर देखा जाए, तो वो सबसे ज़्यादा 1/3 से यानी 33% से ज़्यादा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन जो होता है वो कोयले के जलाने से ही होता है। दूसरा जो हमारा फॉसिल फ्यूल है वो है पेट्रोलियम या कच्चा तेल। ये एक थिक लिक्विड होता है, फ्लूइड है, जो हाइड्रोकार्बन्स के साथ सल्फर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है, और इसको हम कच्चे तेल के रूप में और प्राकृतिक गैस के रूप में देखते हैं, और जो कच्चा तेल है और जो प्राकृतिक गैस है उसके जमाव को पृथ्वी की या तो सतह से या फिर समुद्र की तली के में जो छिद्र हैं या दरारें हैं उसमें जो भूमिगत चट्टाने हैं उनके बनने के समय ये उसमें जो छेद हैं उनमें ये पाया जाता है, उसमें फैला रहता है, और इसको बाहर निकालने के लिए कुओं को तली में से मतलब उनमें तली में तक नीचे तक खुदाई करके वहाँ तक पहुँचते हैं, और फिर वहाँ से पंपिंग के थ्रू इसे बाहर भेजा जाता है, बाद में इसे रिफाइन करके हम पेट्रोलियम और पेट्रोलियम के और जितने भी प्रोडक्ट हैं वो हम उसको परिष्कृत करके बनाते हैं, और जो भारत में जो तेल क्षेत्र हैं वो क्रम से पाए जाते हैं असम के में, गुजरात में और बॉम्बे हाई, और पूर्वी तट पे अगर बात करते हैं तो कृष्णा, गोदावरी और कावेरी के बेसिन में पाए जाते हैं, और मुंबई हाई में भी भारत का शीर्ष जो है पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। अभी रिसेंट जगह आप जैसे बात कर रहे थे कि नए स्रोत ढूंढने की बात की जाए, तो भारत में भी जगह जगह नए स्रोतों को ढूंढा जा रहा है, और अभी हाल फिलहाल में जैसलमेर में ये स्रोत मिला है। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक गैस की। तो ये प्राकृतिक गैस भी कोयले और पेट्रोल के समान ही जीवाश्म जो हैं उन्हीं जीवों के अवशेष से ही है, और इसका निर्माण के लिए भी वही स्थितियां थी जो कि तेल निर्माण, जैसे कि तेल बना है उसी तरह से ये बना है, गैस भी उसी तरह से पाई जाती है, उसी तरह से निर्मित हुई है। और जो प्राकृतिक गैस है वो व्यावसायिक ऊर्जा के मध्य महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में आज दुनिया भर में प्रयोग की जा रही है, और पेट्रोलियम के साथ साथ पाई जाती है। और भारत में ये नेचुरल गैस है उसके प्राकृतिक भंडार बहुत सारे हैं, और इसमें प्राकृतिक जो नेचुरल प्राकृतिक गैस है इसमें मीथेन और कुछ मात्रा में प्रोपेन और ब्यूटेन भी पाया जाता है। और जब ये निकाली जाती है तो ये जो है प्रोपेन और ब्यूटेन गैस ये जो है द्रव अवस्था में होती हैं, और बाद में उन्हें द्रवीभूत करके यानी LPG की तरह से द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस की तरह से अलग कर लेते हैं, और बाकी को जो गैस है उसमें से जो वाटर वेपर है उसको सुखाया जाता है, और हाइड्रोजन जो सल्फाइड गैस है वो जो कि पॉइजनस गैस होती है उसे भी साफ किया जाता है, और बाद में उसे पाइपलाइन के थ्रू वितरण क्षेत्र में भेज दिया जाता है। आजकल देखते हैं कि आप LPG भी पाइपलाइन के थ्रू आती है, पहले अभी सिलेंडर में भी आती है, पहले सिलेंडर में ही आती थी, लेकिन अब पाइपलाइन के थ्रू भी हम इसका इस्तेमाल अपने घरों में कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं खनिज संसाधनों की। जैसे हमने बात की कि भारत के पास में भी बहुत महत्वपूर्ण खनिज का भंडार है, और जो खनिज है जल और पानी की तरह से, जल और वायु की भूमि की तरह से ही पृथ्वी के एक बहुत ही अतुलनीय भंडार हैं, खजाने हैं। और जो खनिज है वो किसी भी देश के जो औद्योगिकरण की बात करते हैं या विकास की आर्थिक विकास की अगर बात करें तो खनिजों का औद्योगिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान है। और पेट्रोल और कोयला या तेल के हिसाब तरह से अगर देखें हम तो ये भी एक अनवीकरणीय साधन है, क्योंकि इनका भी रिप्लेसमेंट इन फ्यूचर जल्दी से नहीं मिल सकता है, और इसीलिए बोला जाता है कि इनका भी प्रयोग हमें ध्यानपूर्वक और विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए, ताकि ये संसाधन भी खनिज संसाधन भी आगे के लिए संरक्षित किए जा सकें, भविष्य के लिए संरक्षित किए जा सकते हैं। अब खनिजों के वर्गीकरण की बात करें, हमने बात की थी कि खनिज भी दो तरह के होते हैं, एक तो मेटेलिक होते हैं दूसरे नॉन मेटेलिक होते हैं। मेटेलिक खनिज भी दो तरह से होते हैं, एक में जिसमें आयरन कंटेंट होता है जिसमें, और दूसरा जो उस तरह के होते हैं जिसमें आयरन का कंटेंट नहीं पाया जाता है। तो जो आयरन कंटेंट है तो उसको हम कहते हैं लोहयुक्त धात्विक खनिज, और जिसमें आयरन का कंटेंट नहीं पाया जाता है उसे हम बोलते हैं अलोहयुक्त धात्विक खनिज। लोह मतलब लोहा है, उसमें तो कौन कौन से हो गए, आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, क्रोमाइट है, इसमें आयरन का कुछ ना कुछ मात्रा अंश पाया जाता है। और जो अलोहयुक्त हैं वो हैं हमारे सोना, चांदी, तांबा, टिन, जिंक, एल्युमिनियम, ये इसमें शामिल होते हैं। और जो अधात्विक खनिज है यानी नॉन मेटेलिक हैं उसमें हम देखते हैं चूना पत्थर हो गया, डोलामाइट है, माइका है, जिप्सम है, फॉस्फेट है, बॉक्साइड है, इस तरह के ये इसमें पाए जाते हैं, मतलब इसके उदाहरण ये हैं। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे जो लोहयुक्त धात्विक खनिज है जिसमें आयरन है, मैग्नीज है और हमारा क्रोमाइट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आयरन की, जो ईंधन के बाद में ये एक महत्वपूर्ण खनिज है, क्योंकि जो तेल और गैस के बाद में आयरन ही महत्वपूर्ण खनिज है, और इसमें जो है आयरन, मैग्नीज, क्रोमाइट, पायराइट शामिल होते हैं, और इसमें लोहे, इन खनिजों में क्या है लोहे की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, और इसीलिए ये मेटलर्जिकल उद्योगों में खासतौर से आयरन और स्टील और जो अलॉय इंडस्ट्री है उसके लिए एक महत्वपूर्ण बेस बनाते हैं। और देश में जो लोहे के अयस्क पाए जाते हैं वो तीन तरह के पाए जाते हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट। हेमेटाइट लाल रंग का होता है इसीलिए रेड ओर कहते हैं इसे, क्योंकि इसमें 68% आयरन होता है। मैग्नेटाइट में सिक्स गहरे भूरे रंग का होता है, और इसीलिए इसे हम ब्लैक ओर कहते हैं, और इसमें जो आयरन कंटेंट है वो 60% होता है, लेकिन जो लिमोनाइट है वो पीले रंग का होता है और इसमें जो आयरन कंटेंट है वो कम होता है, यानी 35% होता है। और जैसे हमने बात की तो भारत में हेमेटाइट और मैग्नेटाइट के तो बहुत विशाल भंडार हैं, लेकिन जो लिमोनाइट है उसका प्रयोग कम होता है। और भारत में जो आयरन का ओर का जो भंडार है, दुनिया भर के भंडार को देखें तो 20% भंडार भारत में पाया जाता है, और उस 20% का भी 96% भाग जो है उड़ीसा में, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और गोवा में मिलता है। यानी ये वाले क्षेत्र हमारे मिनरल, खास तौर से लोहो अयस्क के क्षेत्र में काफ़ी धनी हैं। दूसरा अयस्क है हमारा मैग्नीज। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का विश्व में थर्ड प्लेस है, और भारत में जितना भी प्रोडक्शन होता है उसका 1/4 यानी 25%, अगर 100 किलो अगर मैग्नीज होता है तो 25 kg हम उसको आयात कर देते हैं, को निर्यात कर देते हैं, लेते नहीं देते हैं ना, आयात कर देते हैं। तो मैग्नीज आयरन स्टील और फेरो मैग्नीज मिश्र धातु के अलॉय बनती हैं उसका एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। और दूसरी तरह से जो उसका उपयोग करते हैं वो करते हैं ड्राई बैटरी बनाने में, फोटोग्राफी में, चमड़ा और माचिस बनाने के लिए करते हैं। और भारत में जो धातुकर्मी उद्योगों में जो मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज हैं उनमें लगभग 85% तक इसका उपयोग किया जाता है। और इसके जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं भारत में, किन जगहों पर ये मिलता है, तो उसमें उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है और कर्नाटक इसके उत्पादक क्षेत्र हैं। अब हम बात करते हैं क्रोमाइट की। क्रोमाइट का प्रयोग भी मेटलर्जिकल रिफ्रैक्ट्री और केमिकल इंडस्ट्री में किया जाता है, और अकेले उड़ीसा में ही 98% ये मिलता है क्रोमाइट। अब हम बात करते हैं जो अलोहयुक्त धात्विक लवण है जिसमें लोहा नहीं पाया जाता है, और इसमें जो होते हैं सोना, चांदी, टिन, तांबा, सीसा, जिंक शामिल होते हैं, बॉक्साइट इसमें शामिल होता है, और इनका जो है हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारी इन्हीं से बनती हैं। और भारत में ये कम मात्रा में मिलते तो हैं लेकिन पर्याप्त मात्रा इसमें नहीं मिलती है। बॉक्साइट जो है नॉन फेरस मेटेलिक है, ये एक ओर है जिससे कि एल्युमिनियम धातु निकलती है, और एल्युमिनियम भारत में जो है ना बॉक्साइट के बहुत बड़े बड़े भंडार भी हैं, और इसके से जो निकलती है वो एल्युमिनियम के जहाज, जो एल्युमिनियम मिलती है उससे हम एरोप्लेन्स बनाते हैं, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बनाते हैं, हमारे घर की फिटिंग है, बर्तन है, ये सब डे टू डे लाइफ में हमारे यूज़ हो रहे हैं। और बॉक्साइट का उपयोग जो वाइट सीमेंट बनाने में भी करते हैं, साथ ही साथ कई तरह के केमिकल्स को बनाने में भी बॉक्साइट का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके जो मुख्य भंडार पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं हमारे झारखंड में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, गोवा में और उत्तर प्रदेश में भी ये पाए जाते हैं। कॉपर अगला नॉन मेटेलिक जो है धातु है, अलोहयुक्त लवण जो धातु है वो है हमारी तांबा, जो कि विद्युत का सुचालक होता है, और इसका मेजर जो प्रयोग किया जाता है वो केबल्स बनाने में, तार और विद्युत के संबंध बनाने में, बाइंडिंग अगर कर रहे हैं किसी का तो उसमें हम उसका इस्तेमाल करते हैं। और झारखंड का जो सिंहभूमि है, मध्य प्रदेश का जो बालाघाट है, और राजस्थान के झुंझुनू और अलवर में ही ये खाने काफ़ी मिलती हैं तांबा, इन स्थानों से ज़्यादा मिलता है। अगला है हमारा जो खनिज, धात्विक खनिज, मेटेलिक खनिज की बात अगर हम बात कर रहे हैं तो जिंक और लेड, ये जिंक और लेड जो है बहुत महत्वपूर्ण है, औद्योगिक रूप से इनका काफ़ी महत्व है, और इसका जो प्रयोग है मेनली टायर इंडस्ट्री में होता है, और इसके अलावा हम प्रयोग करते हैं डाई में, कास्टिंग के लिए, ड्राई बैटरीज के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में करते हैं। उसी तरह से इसके अलावा भी हम करते हैं लेड का जो प्रयोग है उसका प्रयोग हम करते हैं केबल बनाने, विद्युत केबल के लिए, बैटरी के लिए, कांच के लिए, एम्यूनेशन, प्रिंटिंग, रबर उद्योग में भी करते हैं। और इनके जो लिंक जिंक और लेड के जो भंडार हैं वो मुख्यतः पाए जाते हैं राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में और मध्य प्रदेश में, और कुछ उत्तर प्रदेश में भी पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं गोल्ड। गोल्ड तो बहुत ही प्रीशियस मेटल है, हम डे टू डे लाइफ में भी इसका काफ़ी प्रयोग देखते हैं। और ये बहुत ही कीमती धातु है और दुनिया भर के लोग इसको काफ़ी महत्व देते हैं और ये एक बहुत ही दुर्लभ खनिज है। और हमारे देश में सोने की जो तीन महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, एक तो कोलार सोना क्षेत्र, हट्टी और कोलार है, और ये दोनों ही जगह जो है कर्नाटक में पाई जाती है। इसका मतलब कि कर्नाटक बहुत ही रिच है मिनरल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं। और दूसरा जो क्षेत्र है वो है आंध्र प्रदेश में रामगिरी सोना क्षेत्र। और कहीं कहीं पर नदियों में जो बालू जमा होती है, जवाब क्षेत्रों में भी कुछ सोना मिल जाता है जिसे कि हम प्लेसर डिपॉजिट के नाम से जानते हैं। और झारखंड में इन प्लेसर डिपॉजिट से थोड़ी बहुत मात्रा में सोना निकाला जाता है। अब हम बात करते हैं नॉन मेटल मिनरल्स के बारे में, तो भारत में ये इनका भी पर्याप्त भंडार है। और ये जो खनिज हैं उनको हम रॉ मटेरियल और एक फ्लक्स मटेरियल की तरह से इस्तेमाल करते हैं। फ्लक्स मटेरियल क्या होता है कि एक पदार्थ जिसे धातु के साथ जोड़ने के लिए मिलाया जाता है, और ये दूसरे जो होते हैं हम रिफ्रैक्टरी मिनरल की तरह से इस्तेमाल करते हैं, जो कि ऊष्मा या उपरोध प्रतिरोध हो या उपचार के तरह से इसको प्रयोग में लाते हैं। और आर्थिक दृष्टि से अगर हम देखें तो इनका बहुत महत्व है, और इसमें शामिल होते हैं चूना पत्थर, फॉस्फोराइट, कायोलिन, जिप्सम और मैग्नेटाइट, बहुत ही महत्वपूर्ण नॉन मेटल्स मिनरल्स हैं। पहले हम बात करते हैं चूना पत्थर की। चूना पत्थर का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? चूना पत्थर जो है निर्माण कार्य में इस्तेमाल होता है, रसायन और धातु कर्मी उद्योगों में होता है, और देश का जो कुल जो जितना भी सीमेंट इंडस्ट्री है, मोर देन 76% में हम सीमेंट उद्योग में चूने का इस्तेमाल करते हैं। आयरन और स्टील इंडस्ट्री में भी बड़ी मात्रा में इसका प्रयोग करते हैं। और इसके अलावा हम चीनी, कागज, फर्टिलाइजर्स और फेरोमैग्नीज उद्योग में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। और हमारे देश में चूने पत्थर के जो है विशाल भंडार भी पाए जाते हैं। अगला है जो मिनरल अधात्विक खनिज है वो है डोलोमाइट। ये भी एक तरह का चूना पत्थर ही है, और हमारे देश के लगभग सभी भागों में डोलोमाइट का पत्थर पाया जाता है, इसके भंडार पर्याप्त हैं। नेक्स्ट हमारा आता है माइका। माइका में भारत अग्रणी है, और ख़ास तौर से शीट माइट माइका में। यहाँ पर जो हाई क्वालिटी का जो माइका पैदा होता है, उत्पन्न किया जाता है, वो बिहार और झारखंड में होता है। और इसी वजह से जो भारत जो है माइका का निर्यात जो है करता है बाहर के देश में, और ख़ास तौर से USA में। और ये एक ऐसा एसेंशियल एलिमेंट है, एसेंशियल मिनरल है, जिसे हम विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में भी प्रयोग में लाना शुरू कर दिया है। और आजकल इसका सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट भी तैयार कर लिया गया है, जिसकी वजह से इसका निर्यात थोड़ा कम हो गया, इसका आयात कम हो गया है। अगला मेटल है हमारा फॉस्फेट मिनरल। इसका प्रयोग हम खास तौर से फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए करते हैं, और राजस्थान के अलावा उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी फर्टिलाइजर्स के बहुत बड़े बड़े कारखाने लगे हुए हैं। अब हम बात करते हैं कि खनिज तो सिर्फ ये तो हमने भूमि के बात की, लैंड पर इतने मिले, लेकिन महासागरों में भी खनिज का काफ़ी बड़ा स्रोत पाया जाता है। तो महासागरीय खनिज संसाधन समुद्री जल, गहरे समुद्री तट पर भी तल पर भी पाए जाते हैं। समुद्री जल से खनिज को निकालना काफ़ी महंगा है, इस क्योंकि वहाँ पर उनका कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, और आर्थिक रूप से भी ये ठीक नहीं होता है। इसके चलते हम इसमें कुछ ही जो खनिज हैं उनको ही हम प्राप्त करने के लिए काम करते हैं, जैसे मैग्नीशियम हो गया, ब्रोमीन हो गया, सोडियम क्लोराइड को कुछ प्रचलित तकनीकें हैं उनके चलते हम उसे करते हैं। मैग्नीज जो है मुख्य जो मिलता है समुद्र की जो तल है उसमें जो गहरी गहरी ग्लैंड जैसी या ग्रंथिकाएं जैसी स्ट्रक्चर है उसमें मिलता है। और भविष्य में मैग्नीज और अन्य जो महत्वपूर्ण धातुएं उनको निकालने का भी स्रोत बन सकता है, वो अच्छे स्रोत हो सकते हैं। और इस प्रक्रिया में काफ़ी पैसा खर्च किया जाता है, करना पड़ता है। और इसमें जो समुद्र तल पर सल्फाइड के रूप में सोना, चांदी, जिंक, कॉपर के बड़े भंडार भी पाए जाते हैं, और इनका बताया कि बहुत कॉस्टली अफेयर है, इसीलिए इन टेक्निक्स को हम बहुत ही प्रचलित जो टेक्निक से ही काम करते हैं, अदरवाइज हम इसको नहीं यूज़ में कर पा रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि खनिजों का अपव्यय हम किस तरह से कम कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं कि हमें किसी भी खनिज को आर्थिक रूप से उपयोगी अपव्यय हो समय होता है जब उसकी कीमत, उसका पता लगाने के लिए, उसके निष्कर्षण के लिए, परिवहन के लिए और भंडारण के लिए को संसाधित करने की तुलना में अधिक हो जाए। तो इसमें कमी लाने के लिए और नियंत्रण करने के लिए हमें 5 विकल्प हैं, उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैसे? रिसाइकल और यूज, एग्जिस्टिंग सप्लाईज, वेस्टलेस, यूजलेस, फाइंड अ सुटेबल सब्स्टिट्यूट, फाइंड ए सब्स्टिट्यूट, सुटेबल सब्स्टिट्यूट और डू विदाउट। तो इस तरह से अगर हम 5 आर्स का 5 विकल्प के थ्रू करेंगे तो हम इसके अपक्षय और खनिजों के अपक्षय और कमी को नियंत्रित कर सकते हैं। जब संसाधन खनिज संसाधनों की कमी हो जाती है तो कीमत बढ़ जाती है, और जब कीमत बढ़ जाती है तो हम ऑल्टरनेटिव खोजों को करते हैं, अधू से भंडारों को खोजने के लिए प्रेरणा कर लेते हैं और नए स्थानों पर खनन में तेजी कर देते हैं। नए विकल्पों को खोजने के लिए और मानव संसाधनों को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया जाता है। प्लास्टिक और कांच को हम खनिजों के विकल्प के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेड और स्टील का जो प्रयोग है वो टेलीकम्युनिकेशन में पहले किया जा रहा था, से कम किया जा रहा है और उसकी जगह पर प्लास्टिक का इस्तेमाल कर किया जाता है। टेलीफोन की केबल में भी तांबे की तार की जगह फाइबर ग्लास के का उपयोग कर रहे हैं। उसी तरह से माइका का विकल्प भी हमने सब्स्टिट्यूट से ले आर्टिफिशियल जो उससे लिया गया है। और खनन तकनीक में नए तरीके, यानी कि हम बायो माइनिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि खनन के लिए पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए पर्यावरण हितैषी तरीका है। और वर्तमान में दुनिया भर में जो तांबे का जो उत्पादन किया जाता है, 30% तांबा इसी तरीके से निकल रहा है। और अगली जो है टेक्निक, वो नैनो टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें कि परमाणु के अपरिमित सामर्थ्य के प्रयोग से प्रत्येक चीज़, दवाइयों से लेकर जैसे सोलर सेल बनाने तक की बात करें, या ऑटोमोबाइल के ढांचे का प्रोडक्शन की बात की जाए या निर्माण की, में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इस प्रकार से बहुत से जो खनिज हैं उनका स्थान नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा निर्मित हुए पदार्थों ने ले लिया है। जैसे अगर पहले देखें तो हम पहले एक लैंडलाइन फ़ोन का इस्तेमाल करते, आज हम मोबाइल फ़ोन हमारे हाथ में देख रहे हैं। तो काफ़ी उस तरह से टेक्निक्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में, यानी कि उसके एग्जांपल हैं हमारी वायु है, जल है, मृदा है, वनस्पति है, जंतु हैं। ये हमारे प्राइमरी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, क्योंकि ये प्रकृति में पुनः चक्रित होते हैं, स्वजनन के द्वारा उत्पन्न होते हैं, कुछ मरते हैं तो नए उसमें पैदा हो जाते हैं। ये जो नवीकरणीय संसाधन है वो सतत और निरपेक्ष हो सकते हैं, हमेशा खत्म हो नहीं होते हैं और एक चक्र के द्वारा पुनः उत्पादित और पुनः निर्मित किए जा सकते हैं। ये भी दो तरह के होते हैं, परपेचुअल और अनकंडीशनली, और कंडीशनली रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं। जो सतत संसाधन है उसमें सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा और जीवाणु ऊर्जा शामिल होती है। सौर ऊर्जा आपको मालूम है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऊष्मा और प्रकाश हर दिन पृथ्वी पर भेजा जाता है सूर्य के द्वारा, और इसको नियंत्रित करके अंतरिक्ष और पानी की गर्म करने के लिए भी करते हैं हम। सोलर पैनल लगाते हैं, सोलर हीटर के इस्तेमाल करते हैं, सोलर कुकर का इस्तेमाल करते हैं। उस तरह से विंड एनर्जी की बात करें तो सूर्य द्वारा जो पृथ्वी को कि ध्रुवों की तुलना में जो भूमध्य रेखा पर अधिक गर्म करता है, और घूमने के कारण, क्योंकि पृथ्वी चक्कर लगाती रहती है इसलिए हवा बहती है, जिसे हम पवन कहते हैं। और इसी में जो पवन है वो क्या है, सौर ऊर्जा का ही एक अपरोक्ष रूप है। और आपने देखा होगा विंड मिल को, यानी पवन चक्रियों का प्रयोग करके हम बिजली भी उत्पन्न करते हैं। साथ में ज्वारीय ऊर्जा, भारत में तो विंड एनर्जी का काफ़ी चलन है और ख़ास तौर से साउथ इंडिया में ये काफ़ी प्रयोग किया जाता है। ज्वारीय ऊर्जा को क्या है कि जो उच्च ज्वारीय तरंगें होती हैं उनके द्वारा उत्पन्न करते हैं, और भारत में भी आज इस क्षेत्र में कुछ क्षेत्र ढूंढे गए हैं, जैसे कि गुजरात का कच्छ और कॉम्बे, जहाँ पर कि हम टाइडल एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं अनवीकरणीय संसाधनों के बारे में। नवीकरणीय संसाधन जो उसमें कि हम शामिल करते हैं, कंडीशनली मैंने पृथ्वी और भूमि और मृदा के लिए बात कर रहे हैं। तो भूमि भी महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि मनुष्य को कृषि के लिए, खनन के लिए, रहने के लिए, सबके लिए जमीन की आवश्यकता होती है। और भूमि के उपयोग के लिए हमने क्या किया है कि इकोसिस्टम्स की जो संरचना है उनके कारणों को बदल दिया है। मानव भूमि का जैसे बहुत इंडस्ट्री लगाने में, रहने के लिए, मनोरंजन के लिए उपयोग करता ही है, और इससे क्या है कि लैंड का डिग्रेडेशन हुआ है। और जब लैंड डिग्रेडेड लैंड हो रहा है तो उसमें फसल और पौधों की जो वृद्धि है वो भी कम हो जाती है, उसकी क्षमता कम हो जाती है। जो सॉइल है वो नमीकरणीय तो ज़रूर है, लेकिन उसकी एक इंच परत बनने में भी बहुत लंबा समय लगता है। तो क्योंकि और जो डिग्रेडेशन है वो कम होता ज़्यादा हो जाता है, लेकिन जो फॉर्मेशन है वो कम होता है। और हमेशा ही जो फर्टाइल जो लेयर है वो ही नष्ट हो जाती है। तो जो सॉइल इरोजन है वो पर्यावरण की बढ़नी है बहुत बड़ी समस्या है। और इसका जो सॉइल इरोजन का मेन रीज़न है वो है लैंड डिग्रेडेशन। इसीलिए भूमि की सुरक्षा करते हैं हम, उसमें नए पौधे लगा के, वनस्पति लगा के, ताकि उसे हम सॉइल इरोजन से बचा सकें, मृदा अपरदन और भूस्खलन को रोकें, मृदा को उर्वर बनाने के निमित्त रखें और जैव विविधता को बढ़ावा दें, आर्थिक वृद्धि को नियमित रखें। इसके बारे में हम लेसन नंबर 17 की बात करेंगे, तभी हम इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। अब हम करते हैं वायु जल का। तो जल के लिए, जल भी हमें मालूम है कि जल ही जीवन है, अमूल्य संसाधन है, और इसको भी हम बेकार होने से रोकें, पुनः चक्रण करें, बाढ़ के पानी को अधिक से अधिक रोके करें, वाटर हार्वेस्टिंग का, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करते हैं। और उसी तरह से बायोडायवर्सिटी की हम बात करते हैं, तो उसमें भी हम आनुवंशिक स्पीशीज़ और पारिस्थितिक विविधता को शामिल करते हैं, और इसके बारे में हम डिटेल में पहले ही बात कर चुके हैं। और किस तरह से हम कृषि में कर सकते हैं, नई फसलों के रूप में, बेहतर नस्लों के लिए जनन पदार्थ के रूप में, हम पदार्थ स्रोत के रूप में, और नए जैव निम्नीकृत कीटनाशकों के स्रोत के रूप में कर सकते हैं। तो बढ़ती हुई जनसंख्या का विपरीत प्रभाव समृद्ध और अन्य पर्यावरण और उसकी जैव विविधता पर पड़ता है, इसीलिए हमें पारितंत्रों का जो अति दोहन है उसे रोकना होगा, पर्यावरण के विनाश को रोकना होगा और प्रदूषण को रोकना होगा, यानी कि संरक्षण करना पड़ेगा हमें हमारे प्राकृतिक संसाधनों का। तो संरक्षण और स्वस्थ जैव विविधता को संरक्षित एवं नियमित करना चाहिए, और यही वजह है कि अगर हम ये सब करेंगे तभी हम अपनी जो वर्तमान और भावी पीढ़ियों को अपने प्राकृतिक संसाधनों का पूरा लाभ दे पाएंगे। अब हम इस चर्चा को यहीं पर खत्म करते हैं। धन्यवाद।